ചക്ഷൂരുന്മിലിതം ജേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. വഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ മഹാപദന്നായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യമന്നേ ഗൗരത്തിഹേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വിശ്വഭാനുസുതേ ദേ പ്രണമാമി ഹരിത്വേ. ഹാ ദേവി കാകുഹര ജാതിപത്ഭൂവി ദണ്ഡവത ഉദ്ഭതാർത്തി അസാദമബുധസ്വജനസ്തവഗണീഗണന വിധി. അംഗശ്യാമലിനിഷ്ഠതാഭിഹിതോ വന്ദേ കൃതേന്ദ്രീവരം ജഡ്ഡം ജാഗുദരോത്തി സംവിദധതം പട്ടംബരശ്ചിയ വൃന്ദാരണ്യ നിവാസിനം വിദിലതദ്ദാമാഭിരാമോദരം രാധാസ്കന്ദനിവേശിതജലഭുജം ധ്യായേം ദാമോദരം. ഭക്ത്യാഭിന്നാപരാധലക്ഷ്യൈ ക്ഷിപ്താസ്യ കാമാതിതരംഗമധ്യൈ കൃപാമയി സ്വാമി ശരണം പ്രപന്നാ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാഃ. ഗുരവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായൈ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ സദ്ഭക്തായ ഞങ് പ്രവ്രജന്തമനുപേതമപേതകൃത്യ ദ്വൈപായനോ വിരഹകാതരയാജുഭാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ സർവോഭിനേതു തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാന് തവൈവാസ്മി തവൈവാസ്മി നിമാദയാദിനാ ഇതി വിജ്ഞായ രാധേ തം മാം. ഭജാമി രാധാം അരവിന്ദനേത്രാം സ്മരാം രാധാം മധുരസ്മിതാഭ്യാം വദാമി രാധാം കരുണാഭരദ്രം തപോ മമ നാസ്തി ഗതിർന കാപി. മനഃശിക്ഷാ ആരംഭ കരു. ഹലോ മനഃശിക്ഷാ ആരംഭ കിയാ രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമി ജി അബാധ്യ മന കോ ചഞ്ചല മന കോ ശിക്ഷാ ദേ രഹേ ഹൈ. അബാധ്യ ചഞ്ചല മനകെ ശിക്ഷാ ദേ രഹേ ഹൈ. ബദ്ധ ജീവേ ভজনের অনুকূল অথবা প্রতিকূল মনই আছে। লৌকিক শ্রদ্ধা মন দ্বারাই হয়, মন ছাড়া কোনো গতি নেই, মনকে অতিরিক্ত আর কোনো গতি নেই। যদি মনকে বশীভূত করা দিয়া যায় তত ভজন সহজ রূপ নে হোগা। ইসলিয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী জি स्वरूप दामोदर के निकट जो भगवान की कथाएं सुना, महाप्रभु के निकट सुना, पीछे से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के यहां से जो सुना, सुन करके साधकोचित रूप में वो तो हैं सिद्ध किंतु दिखला रहे हैं साधक उचित भाव। किसी को लोभ उत्पन्न होता है तो उनको अत्यंत लोभ उत्पन्न हुआ राधा माधव की सेवा करने के लिए, खूब उत्कंठा हुई। रूप गोस्वामी से उन्होंने यह सब चीज सुना। कैसे फिर उसमें हम प्रवेश करेंगे, उसके लिए हम लोगों के लिए उन्होंने लिखा मनोचिकित्सा। तो हमने बतलाया था गुरु गोष्ठे गोष्ठालयी सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी भजद्वदंद सरणे सदा दम्भम हित्वा कुरुगतिम अपूर्वाम अतिताम अये स्वंतधात चतुभी जाति पदा। हेमन, तुम सब प्रकार के दम्भों को छोड़कर के, कपटता को छोड़कर गुरु जी ने, गुरुदेव ने, गुरुदेव के श्री चरण कमलों में, गोष्ठ में, गोष्ठ माने वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में, गोष्ठालयसु गोष्ठ में जो रहते हैं ब्रजवासी लोग, सुजन है दूसरे संप्रदाय के भी जो वैष्णव लोग यहाँ पर भजन करते हैं, स्वरूपतः वो ब्रज में नहीं रहते किंतु ऊपर से ब्रज में रहने वाले हैं, और गोष्ठालयसु जो हैं स्वरूपतः भी यहाँ पर रहते हैं, मन से भी रहते हैं, ये उत्तम भागवत भूसुरगणे ब्राह्मण लोग जो कुछ भक्ति रखते हैं कृष्ण के चरणों में, वो ब्राह्मण हैं, भले ही उसमें कुछ स्मार्ताचार अधिक है, अपने गुरु के द्वारा पाए हुए मंत्र के प्रति, श्री नाम में जो हरि नाम है उसके प्रति, ब्रजवदंद शरणे और राधा कृष्ण जुगल जो है उनके चरणों में शरण लेना, इन सब के प्रति दम्भ को छोड़ करके अपूर्व अत्यंत अधिक रति प्रीति कर, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं। इसका एक है रति और एक है अपूर्व रति, दो सब में दो अर्थ होंगे। गुरु जी के प्रति रति होनी चाहिए गुरुदेव के प्रति, और अतिरति माने विसंभेन गुरु सेवा, विशेष रूप से उनकी सेवा है। इसको समझने के लिए ये समझो जो गुरु जी की सेवा किसको कहते हैं, भजन का मूल गुरु सेवा है, गुरु के प्रति निष्ठा है। गुरु एक पथ दिखलाने वाला, पथ प्रदर्शक गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु, और एक होता है अंतर्ज्ञानी गुरु, चैत्य गुरु। ये चार गुरुओं का उल्लेख मिलता है। इन सबके प्रति विशेष करके शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों एक, दोनों एक ही स्तर के हैं। गुरु को, दीक्षा गुरु को भगवान का स्वरूप समझो, और शिक्षा गुरु को
दीक्षा गुरु रूप,
गुरु को दीक्षा गुरु को रूप भगवत रूप, और शिक्षा गुरु को भगवत स्वरूप, और दोनों यदि एक हैं तो कोई बात ही नहीं। ऐसा भी तो होगा जैसे हम लोगों के शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही थे, उन्हीं के निकट हम लोगों ने दीक्षा भी लाभ किया और उन्हीं से हम लोगों ने शिक्षा भी प्राप्त, पथ प्रदर्शक गुरु दूसरे थे। जैसे हो यदि दोनों के एक ही गुरु हैं तो कोई बात नहीं है, दोनों भी यदि हैं तो दोनों के प्रति एक ही भाव, यदि उनका दोनों का स्तर एक हो। विशेष करके बतलाया जो गुरु महाभागवत होना चाहिए, और नहीं तो शिष्य की श्रद्धा वैसी नहीं रहेगी। कल्पना करके नहीं होगा, सचमुच में वैसा नहीं। नरोत्तम ठाकुर का कोई शिष्य है उसकी कैसी अपने आप श्रद्धा रहेगी। इसलिए यदि उत्तम महाभागवत है तब तो कोई बात नहीं, किंतु वो भी मध्यम अधिकार में आकर के शिक्षा दीक्षा देते हैं। संबंध ज्ञान को पुष्ट करते हैं और अनर्थ को दूर कर सकते हैं, ऐसी योग्यता संपन्न यदि हो तो वो गुरु अनर्थों को दूर कर सके और संबंध ज्ञान को पुष्ट कर दें वो दीक्षा देंगे। और जो भजन की शिक्षा देकर के हमारे भजन को समृद्ध करते हैं, उन्नत ले जाते हैं, वो शिक्षा गुरु। हम लोगों के दीक्षा गुरु हमारे लिए दीक्षा गुरु हैं, किंतु दूसरों के लिए क्या है? दीक्षा गुरु हैं। और दूसरों के जो दीक्षा गुरु हैं और उसी कोटि के हैं, जैसे हम लोगों के समय में श्रीधर महाराज जी थे, माधव महाराज जी थे और सब लोग थे, तो वो लोग हमारे लिए शिक्षा गुरु हैं और उनके शिष्यों के लिए हमारे गुरु जी। अब दोनों में कौन कम है कौन अधिक है, कुछ तारतम्य हो सकता है, हो सकता है साथ में, किंतु फिर भी कोई कम नहीं है। इसीलिए दोनों के लिए यहाँ पर गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। गुरु के लिए दो प्रकार की सेवा है। एक सेवा साधारण से तो कर्तव्य ज्ञान से जो होता है, और जो कर्तव्य ज्ञान नहीं है हृदय से ही अनुराग से होता है। यहां पर अनुराग के लिए कहा, कर्तव्य नहीं, इसी को कहते हैं विसंभ्रेण गुरु सेवा। अब इस चीज को जरा ठीक से समझो, जो कैसे कैसे ये होता है। एक आदमी साधारण रूप में साधक निष्कपट व्यक्ति घर को छोड़ करके गुरु जी के संपर्क में आया, आने पर उसने दीक्षा लिया, शिक्षा भी धीरे धीरे ले रहा है, भजन में कुछ बढ़ने लग गया, तो उसको अर्चन है, श्रवण है, कीर्तन है, अर्चन है, बंदन है और जो भक्ति है उसको वो कर रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दाश्चक्षात्मनि बंदन, खूब अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो, ये कर रहा है। और इसी की प्रधानता देता है, गुरु जी हैं उनको प्रणाम कर लिया, सवेरे उनके चरण स्पर्श कर लिए गुरु जी का, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम बंदनम दाश्चक्षात्मनिवेदन नवधा भक्ति करता है, ने? उनको प्रणाम कर लिया तो स्तुति जैसा होता है ये सब कर दिया, अधिक सखी उनके चरणों में नहीं पुष्प दे दिए। वो श्रवण कीर्तन स्मरण पर अधिक जोर देता है, ने? वंदना से लेकर के और भक्ति के जो अंग हैं और भी पांच प्रकार के, तीन प्रकार के, एक प्रकार का, पांच प्रकार का, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास से मुक्ते श्रद्धाय श्रवण, सकल साधन से यही पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्माइते, अरे यही पांच अवसर, श्रवणम कीर्तन स्मरणम और तार मध्य सर्वस्ते नाम, ये सब नाम संकीर्तन इत्यादि कर रहा है, किंतु प्रधानता देता है साधन पर और भजन करता है, गुरु जी को भी प्रणाम भी करता है। ये साधारण हुआ, ये साधारण गुरु की सेवा है। क्या बात है? दूसरी एक सेवा ये है, दूसरी सेवा ये है हम श्रवण कीर्तन इत्यादि करेंगे किंतु गौण रूप में करेंगे, मुख्य रूप में नहीं। गुरु जी की सेवा करने से जब समय मिला तो श्रवण में बैठेंगे ना? गुरु जी की सेवा जो व्यक्तिगत रूप में है उनकी सेवा करेंगे और इसके बाद में समय मिला तो हरिनाम करेंगे। हमको समय मिलेगा, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और समय मिला तब फिर हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाक्षाक्ष निवेदन ये सब करेंगे। यदि समय नहीं मिला तो पीछे करेंगे, पहले गुरु सेवा कर लें, ये विशेष है ना? इसलिए यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। कृष्ण के प्रति जितनी भक्ति है उतने ही गुरुदेव के प्रति होगी, ये सचराचर नियम है। किंतु भगवान के प्रति जितनी भक्ति है प्रथम अवस्था में उससे अधिक गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। किंतु गुरु भी वैसा होना चाहिए, शिष्य भी वैसा होना चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से ऐसा होगा। जैसे शंकराचार्य जी के लिए एक उल्लेख मिलता है या और भी शिष्यों के लिए उल्लेख मिलता है, शंकराचार्य का शिष्य वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो गुरु जी के कपड़े धोता, गुरु जी के लिए रसोई बनाता, गुरु जी के लिए क्लांत हो जाते, उनको पंखा झलता और ये सब सेवा काम करता था ना? और गुरु जी जब प्रवचन करते थे तो उन सब कामों से निपट करके तब फिर उनकी वो श्रवण करने की भी चेष्टा करता था। लोग उसे मूर्ख समझते थे, ये इसको इधर में रुचि नहीं है। एक दिन वो कपड़े लेकर के बद्री नारायण में गंगा के उस पार में चला गया, कपड़े धोने के लिए अच्छे पत्थर वत्थर थे, घाट थे, इसलिए वो पुल को पार करके थोड़ा सा दूर जा करके वो कपड़े धोने लग गया। जब कपड़े धोने लगा तो वहां से आते समय में उसको कुछ विलम्ब हो गया, देर हो गई। अब वो देर हो जाने पर इधर फिर 3 बज गया, शंकराचार्य जी पाठ आरंभ करने वाले हैं, सब सेवक आ गए हैं, विशेष करके ये धुरंधर बड़े बड़े विद्वान थे वो सब लोग आ गए हैं। किंतु वो जो कपड़ा धोने के लिए उधर में गया रसोई बनाने के बाद में और धो करके वो लौटते सुखाते सुखाते कपड़े लौट करके आने में देर हो गई। शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं इसी तरह से, वंदना भी नहीं कर रहे हैं, आरंभ नहीं प्रवचन कर रहे। तो उनके विद्वान शिष्यों ने कहा गुरु जी पाठ आरंभ कीजिए, सब लोग तो हम आ गए हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे विद्वान शिष्य ने कहा जी गुरु जी अब तो पाठ आरंभ हो जाए, विलंब मत कीजिए। तीसरे चौथे सब ने कहा जी सब तो आ गए हैं। तो एक ने कहा जी अरे वो कपड़े धोने के लिए गया, अभी नहीं आया है। गुरु जी कोई बात नहीं, वो तो समझता नहीं है, इसलिए हम लोग समझने वाले हैं, आप पाठ आरंभ कर दीजिए। तो अभी गुरु जी ने पाठ आरंभ, इतने में वो दौड़ता हुआ हाँपता हुआ जल्दी से आकर के कपड़े को धो करके और चुपचाप आकर के उसमें बैठ गया। और आते ही एकदम वंदना संस्कृत में अनर्गल रूप में और ऐसे श्लोक बोले जो और लोगों के लिए समझना भी बड़ा भारी दुष्कर, नाना प्रकार के अलंकार और सब से युक्त एकदम बोलने लग गया। लोगों ने कहा ये मूर्ख आदमी, आज इसकी इस तरह से हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा और इतना अलंकार और ये इसके साथ में ये स्तुति कर रहा है। सब लोग देखकर के आश्चर्यचकित हो गए। शंकराचार्य ने दिखलाया ये विशेष भी संभव ना, इसलिए हमारे गोविंद जी महाप्रभु जी की कैसे सेवा करते थे, विषमेन गुरु सेवा इस तरह से करते, इसलिए ऐसी सेवा होनी चाहिए गुरुओं के प्रति, ये विशेष। विशेष करके विषम्भेण गुरौ सेवा। जैसे कृष्ण की सेवा से अभी नहीं होगा, कृष्ण से हमारा उतना भी संबंध नहीं हुआ है, श्रवण कीर्तन तो ये सब उपास्य से संबंधित है। गुरु जी को सर्वदेवमय गुरु ऐसा समझो, गुरु के प्रति वैसी निष्ठा है तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। लाखों उदाहरण इसके हैं। कृष्ण और सुदामा कितना कष्ट सहा और तो गुरु जी ने देखकर के प्रसन्न हो रहे, आ जाओ सब किस तुम्हारी सिद्धि हो जाए। वो हजार जन्म में भी पढ़ते तो इतना नहीं होता। इसलिए यदि उत्तम भागवत गुरु हैं, सर्वसमर्थ हैं, भगवान को वशीभूत किए हुए हैं, कृष्ण से उनका संबंध है परिपक्व, तो वो इच्छा करने से ही अपने भक्ति उसके अंदर में संचरित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे उनके प्रति स्वतंत्र होकर के, उच्छृंखल होकर के सेवा करने से नहीं होती। समझो कि हम क्या गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं। देखो हमारे गोविंद जी ने, महाप्रभु जी के सेवक हैं, वो इतनी प्रगाढ़ता से अपने गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु जी की। स्वरूप दामोदर को कहते हैं ये क्यों आकर के इनको रुलाते हैं रात भर, समझते हैं। मूर्ख नहीं थे वो, उनकी कारिका है, गोविंद जी का कर्चा कहलाता है वो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको लेकर के देख करके चैतन्य चिंतामृत लिखा। वो मूर्ख तुर्ख नहीं थे हमारे जैसे, संस्कृत के श्लोक लिख सकते हैं, महाप्रभु की लीलाओं का ग्रंथन किया अपनी कारिकाओं में, उसे चैतन्य चिंतामृत। इसलिए गुरु सेवा से क्या नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में या कहां पर एक आया है ऐसा, हमारे अंदर में बहुत तरह के अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, और इसके अतिरिक्त तो नमापराध सेवापराध, इसके अतिरिक्त भी बहुत से अपराध हैं, अनर्थ हैं। काम को कैसे दूर किया जाएगा, क्रोध को कैसे दूर किया जाएगा, इनके लिए अलग अलग एक एक उपाय है। एक एक अनर्थ को दूर करने के लिए, क्रोध को दूर करने के लिए उपाय क्या है, कोई कामना ही न रहे। यदि कामना नहीं रहेगी तो क्रोध नहीं होगा, और हृदय में कामना, जिसके अंदर में जितनी अधिक कामनाएं हैं, भोग की लालसा है, तो यदि वो भोग की लालसा में बाधा कोई देगा तो उसको क्रोध आ जाएगा। और जब कामना ही नहीं है, जिसका आरंभ ही नहीं है, आरंभ माने काम ही नहीं है,
संभव
वो भागवत उत्तम है, जिसका अंदर में कोई कामना ही नहीं है, बात एक कामना है। वो कामना क्या है, हमारे गुरु जी कैसे प्रसन्न हो, भगवान कैसे प्रसन्न हो, हम राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति कैसे हमको मिलेगी, बस एक ही उनको और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों का हृदय भगवान के लिए अपना घर हो जाता है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और जिसके अंदर में हजारों लाखों कामनाएं, चोरी चमारी कपटता बदमाशी सभी वो कर सकता है, इसलिए कोई कामना ही नहीं रहे इसके अतिरिक्त। इसलिए क्रोध को दूर करने के लिए उपाय है, कामना ही मत करो। काम है इसके लिए क्या करेंगे, साधुओं के संग में रह करके। और तुम जैसे कि कामना ही उत्पन्न न हो, ऐसे चेष्टा करो, क्या करो, सब चीजों को छोड़ दो, जितनी आसक्ति की वस्तुएं हैं छोड़ते जाओ, धीरे 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 छोड़ते 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 सब आसक्ति की जितनी चीजें हैं, विषय की वासनाएं, सबको तुम धीरे धीरे छोड़ दो, तो ये काम नहीं। किंतु गारंटी नहीं है जब फिर काम नहीं आएगा। इसी तरह से काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य के लिए एक एक सब उपाय दिए गए, और सब लोगों और सब अपराधों के लिए भी, किंतु एक गुरु की कृपा से, गुरु जी की सेवा से सर्वम सिद्ध, सब कुछ अनर्थ दूर हो जाता है। एक गुरु यदि वैसे रहे और उनकी सेवा की जाए इस प्रकार से, तो सब अनर्थ एक गुरु सेवा के द्वारा ही हो जाए। और फिर वो आएगा नहीं, गुरु साधु संग देता है, हरि कथा बोलता है, अपनी सेवा में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है, निरंतर हरि कथा कहते कहते सुनते 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 काम क्रोध लोभ मद मोहमद एक संपूर्ण रूप से बिखरे, इसलिए विशेष सेवा है। उसी प्रकार से गोष्ठे, गोष्ठ के लिए भी उसी प्रकार से कहा, गोष्ठालय के लिए भी कहा, एक साधारण रूप में और एक असाधारण रूप में। गोष्ठ माने क्या लिखा, ब्रजधाम, ब्रजधाम ब्रज में कहीं भी गोष्ठ में, ये ब्रजधाम किस लिए कहा, बिना ब्रज में रहे हुए भाई वैसा भक्ति जो तुम चाहते हो वैसा नहीं होगा कहीं, ये खाने साधुगण से ही खाने वृंदावन, यह बात ठीक है, जहां साधु लोग रहते हैं वहीं पर वृंदावन है। जब यही बात ठीक है, महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं, तो महाप्रभु उत्कंठित क्यों होते हैं वृंदावन में आने, क्यों उत्कंठित होते हैं, और जहां रहते हैं वहीं पर
वृंदावन, भैया
वृंदावन चिंता में करते हैं, उसकी पहाड़ी किला देखा माने गोवर्धन, शतक पर्वत को गोवर्धन देखा, यमुना जी को देखा, समुद्र को देखा यमुना, वन देखा, सब समय वृंदावन के चिंता में भी घोर है, और वृंदावन आने के लिए उत्कंठित, जब वृंदावन में आए तो उनकी कैसी दशा हो गई, जल्दी से उनके साथ में वो थे बलभद्र भट्टाचार्य, जल्दी ले चले नहीं तो यहाँ पर ना जाने क्या दुर्घटना हो जाएगी, नदी में डूब जाएंगे, क्या हो जाएगा, कोई ठीक नहीं, बस जल्दी से लेकर के भगे, 8-10 दिन उनको रहने दिया यहाँ, बाकी लेकर के चले गए, नहीं रह सके। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी ने कहा भजन के सार में सन्नाम रूप चरिता आदि सुकृतनानुक्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुगामी जनानुगामी कालम नएद अखिलान इत्युपदेश सार। ब्रज में रहो, ब्रजवासी जो गुरु हैं वैष्णव हैं उनके अनुगत्य में रहो, मन के द्वारा सब समय उनकी लीला कथाओं का चिंतन करते हुए जीवा से उनका नाम कीर्तन करो, बस यही समस्त उपदेशों का सार है। तो उसमें भी ये लाए हैं, इस तरह से सब विशेष उसमें गुरु जी के संबंध में देखो, रघुनाथ जी ने ये लिखा ना, अब वो अपनी सेवा गुरु जी की कैसे कर रहे हैं, कैसे सेवा करते हैं, सिरूप मंजरी, सिरूप मंजरी पतिता पुरेश में परस्त पुंसम नहीं पत्तसी इति बिंबाधरे खतामत अनागत भक्त प्रिताया यत्ते बधाई की मुत सुख पुंगमेन। देखो कैसे वो अपने गुरु जी की सेवा करते हैं, दो रूप में सेवा, एक बाह्य शरीर के द्वारा और एक अंतर रूप में, ये अंतर रूप से रूप गोस्वामी की जो सेवा करते हैं वो उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, रूप गोस्वामी जो चाहते हैं मनोभीष्ट ना, यही गुरु सेवक करता है, ये मनोभीष्ट सेवा करे, गुरु जी जो चाहते हैं अंदर में जान करके उसको करेगा। एक आदमी रूप गोस्वामी का पैर दबा रहा है, पंखा झल रहा है, और एक आदमी रघुनाथ दास गोस्वामी ये श्लोक पढ़ करके गुरु जी को के पास में सुना रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रूप गोस्वामी का किससे अधिक प्रसन्न होंगे, इस सेवा के द्वारा। और रूप मंजरी ब्रज में आप बड़ी प्रसिद्ध हैं, आप बड़ी पतिव्रता हैं, आपके पति परदेश गए हुए हैं, 5-6 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया, तुम्हारे पति नहीं, आप बड़ी सुंदरी हैं और पतिव्रता भी हैं, तो पति तो बाहर में गए हैं किंतु अभी मालूम होता है जो कोई सुख पक्षी ने आपके होठों को देखा और समझा वो क्या फल? बिंब फल, मानो ठुकरा गया। देखकर के रूप गोस्वामी हंसने लगे, रूप मंजरी हंसने लगी, ये भी हंसने लगी। सिरूप मंजरी कराच की तपाद पद्म गोस्तन नंदन भुजारती समस्तिकाया हमोदतः कनो गौर पदारविंद संवाहन आनी सनकई तव किंकरी से। राजा जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, कह रहे हैं कि श्रीमती राधिका जी क्लांत हैं, कृष्ण के गोदी में अपना सिर रख करके सो गई। कृष्ण उनकी केशों को सहलाते हुए अपने हाथों को कर स्पर्श से उनको दूर कर रहे हैं और रूपमंजरी जी पीछे बैठी हुई हैं, पैरों को, राधा जी के पैरों को संवाहन धीरे 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 कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ललचाई नेत्रों से इनसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मैं वही रूपमंजरी जी की जो सेवा है उसका उच्छिष्ट सेवा हमको मिलेगा? अथा तू जो सेवा कर रही हूँ वो कहेंगे तुम जरा सेवा करो, मैं जरा और एक सेवा में जाती हूँ। ये सब सेवाएं हैं उन लोगों के लिए, तो हम लोग अपनी योग्यता और अधिकार के अनुसार में, जिस अधिकार और योग्यता में है उसी योग्यता अनुसार में हम लोगों को बड़ी बड़े विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में, उनकी मनोवासनाओं को जान करके यदि हमारे प्राण भी निकल जाए तो भी कोई बात नहीं, प्राण तो आचार आचार रहेगा। इसलिए विषम रूप में यदि गुरु सेवा कर सकें, उनकी मन वासना कुछ भी समझा जी हाँ ये उनकी इच्छा है, बस उसी पर तत्ना उसमें चल, ये सब विषम बेन गुरु सेवा है। तुम ये मत देखो जैसे इससे जो मैं कर रहा हूं इससे अधिक साधन भजन होगा, उनके पास में बैठ करके सेवा करने से क्या होगा ये मत देखो। तुम ये देखो जो वो क्या चाहते हैं उनके ऊपर में निर्भर। जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद, जिनके प्रसाद से ही भगवान का प्रसाद कृपा हो जाती है, और यदि गुरु जी प्रसन्न न रहे तो सब जगत प्रसन्न होकर के तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है। और तुम अपने आप कुछ सेवा चेष्टा करोगे उसे तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो कर्म हो जाएगा सीधा साधी। मनमानी रूप में मत चलो, गुरु के आशीष रहो। गुरु को चिंता रहे जो देखो हमारा भी सेवक खाया नहीं क्योंकि मैंने नहीं प्रसाद पाया, चिंता रहेगी कि नहीं ऐसे सेवक के लिए। इसलिए गुरु को चिंता रहनी चाहिए, हम उनके आश्रित हैं, हम शरणागत हैं, इस तरह से सेवा होनी चाहिए। अब यहां पर बतलाया ब्रजधाम, ब्रजधाम में हम लोगों ने बतलाया राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है, गोकुल वृंदावन नंदगांव बरसाना इत्यादि से गोवर्धन श्रेष्ठ है, और गोवर्धन से श्रेष्ठ अधिकारी लोग ऐसा सेवा करेंगे। ब्रजवासी जन के लिए विशेष और एक साधारण, साधारण ये हुआ कि अपने संप्रदाय के जो उत्तम भागवत हैं यहां रह करके राधा कृष्ण जुगल की विशेष रूप से सेवन चिंतन करते हैं वो एक है, ये साधारण। विशेष रूप में क्या, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा है जतकिन चित्तेण गुरुमकी कटमुखोते समस्त संगीत सर्वानंद मुकुंद दैतम लीला अनुकूलम परम शास्त्रेर मोहर मोहर निशंकितम ज्ञानतया ब्रह्मादेव सत्यहं ततो सर्वम मया इदम वंदते। रघुनाथ दास गोस्वामी ये ब्रजवासी कैसे किस रूप में देखते हैं, हमें एक देखते हैं अभी जैसा ये धाम है उसमें लोग रहते हैं उसके अनुरूप में हम देखते हैं, जथा जैसे दृश्यमान प्रकाश। अभी दृश्य प्रकाश मानने हम सबको ही नित्य मान लें तो फिर गड़बड़ हो जाए, चोर चोटा बदमाश हम देख रहे हैं, रक्षे वाले डकैती करने वाले दूसरों को ठगने वाले यहां पर बहुत ऐसे हैं। विशेष करके जो लोग तीर्थ यात्रा आते हैं यहाँ के जितने लोग हैं रिक्शे वाले से लेकर के सभी ठगने की चेष्टा में रहते हैं, पैसा उनका निकाल ले। साधारण आदमी भ्रमित हो जाता है, ब्रज के प्रति उसको कुछ नफरत हो जाती है। और रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करें, जब किंचित तृण गुल्म कीकट मुखम, यहाँ का तृण गुल्म लता वृक्ष मनुष्य जो कुछ है, गायें हैं, सब कुछ, बाघ भालू जो कुछ भी यहाँ पर, सर्प बिच्छू जो कुछ है, मच्छर तक चूहा तक भी, ये सब कृष्ण लीला के अनुकूल सच्चिदानंद स्वरूप है। हम देख सकते हैं ऐसा कल्पना करेंगे तो, यहाँ पर एक सांड आ रहा है रास्ते में और हमने कहा ये तो प्रभु कृष्ण के लीला के अनुकूल है, बस उसे गया और उसने सिंह उठाया बस हो गया। उनकी धारणा और हमारी धारणा में अभी अंतर है, वो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि से सब सबको ब्रजवासी के रूप में देखते हैं। गुल्म कीकट मुखम जो कुछ है ब्रज में, पेड़ पौधा लता गुल्म सब उनके लिए सच्चिदानंद स्वरूप है, उनके लिए वो ठीक है। किंतु हम अभी जिस अधिकार में हैं, उस अधिकार में वो जो पहले जो कहा वही ठीक है। कौन? जो यहाँ पर ब्रज में रह करके, चाहे यहाँ जन्म हो और न हो, कृष्ण में वैसे ही जैसे कि ब्रजवासी लोगों की भावना होती है, ऐसे भावना वाले लोग विशेष करके सर्वोत्तम माधुर्य रस है उसकी जो गोपियां हैं, ऐसे गोपियों भाव वाले जो व्यक्ति हैं, जो भजन कर रहे हैं, महात्मा लोग हैं, वो लोग ब्रजवासी उनको समझ करके उनकी सेवा करो। क्या सेवा करो? उनके मुख से जो हरि कथाएं निकल रही हैं उसकी सेवा करो, चरण धूलि उनकी सेवा करो। चरण धूलि माने क्या? यही सब चीज सेवा के द्वारा उनके प्रति रति, अत्यंत उत्कृष्ट रति उनके प्रति हो, तब ये भजन होगा। इसलिए उनका एक भाव, साधारणों के लिए एक भाव। किंतु मन में ये सब समय रखो, यहाँ जो कुछ है रघुनाथ दास गोस्वामी जो करें वही परम सत्य है। एक दिन हम लोगों को वहां तक पहुंचना है जब हम देख सकेंगे ये सब कुछ, यहाँ के ब्रजवासी इत्यादि जो कुछ गोल मलता सभी कुछ चिन्मय और कृष्ण के लिए अनुकूल है। किंतु जो लोग अभी इस स्थिति में, जो लोग ब्रज के भावों को लेकर के यहाँ पर भजन कर रहे हैं, चाहे उनका जन्म हो चाहे न हो, उनको ब्रजवासी समझो, तब तक कल्याण हो, उनका संग करो। और यहाँ पर जन्म हुआ हो विरोध तो मत करो, किंतु यदि भक्ति के विरोधी हैं तो उनसे कोई संबंध मत रखो, यहाँ जन्म मेले वाले का भी। इसलिए वहां पर बतलाया क्या, ब्रजवासी जन इनको समझ करके तब ऐसा भजन करो, और उसमें भी अपने मन के भावना के अनुकूल सजातीय निग्ध आश्रय, आश्रय माने हृदय, अपने अनुकूल हो तब हो। आप भगवान का भजन कर रहे हैं, कृष्ण का भजन कर रहे हैं, और एक अद्वैतवादी या मायावादी कृष्ण को मायाबद्ध समझता है, वो मुक्ति को श्रेष्ठ मानता है, बहुत सदाचारी है, व्यवहार लोक व्यवहार में भी बहुत ठीक है, उदार भी सब ठीक है, संसार में आसक्ति नहीं है, किंतु वो मुक्ति चाहता है और सर्वम खलु इदम ब्रह्म मानता है। उस तरह से सप्तमसि तुम भी वही ब्रह्म हो, हम भी वही ब्रह्म, ऐसा मानता है। और एक आदमी है ब्रज की भावना के अनुरूप में कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, अभी मुक्त तो नहीं हुए किंतु उसके इसमें रुचि है और अभी क्रोध भी कुछ है उनके अंदर में, तो दोनों में से किसका आदर करना चाहिए? अपने अनुकूल जो है, थोड़ा सा क्रोध भी है थोड़ा काम भी है कोई बात नहीं, राधा कृष्ण के प्रति ब्रज की भावना के अनुरूप में जो भजन कर रहे हैं वो श्रेष्ठ हैं, उनका संग करो। मायावाद और अद्वैतवादियों का संग होने से तुम्हारी भक्ति संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी, इसलिए ये सब विचार करना चाहिए ब्रजवासियों में भी। इसलिए सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे मंत्र, मंत्र में ब्राह्मण इत्यादि हैं उनका भी निरादर मत करो, किसी का भी निरादर मत करो, किंतु संग उन्हीं का लाभ करो जिससे कि हमारी भक्ति बढ़ेगी। ये देखो विचार करके, स्वमंत्रे अपना मंत्र है, किसी से पूछा जाए अपना मंत्र किया अन्य किया तीन बार, तो तीन बार अन्य करने वाले में बहुत से ऐसे है जो सवेरे कर लेते हैं, दो बार शाम को नहीं करते। सवेरे भी करते हैं तो चंचल चित्त से करते हैं, चित्त को स्थिर करके नहीं होता। बहुत से लोगों को हमने सुना है जो गुरु जी ने हरे कृष्ण दिया है बस वही करते हैं, ऐसा मत करो, भजन नहीं होगा। गुरु जी ने जो मंत्र दिए हैं ब्रह्म गायत्री पुरुषों के लिए, इसके बाद में गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गौर मंत्र गुरु गौर गायत्री, गोपाल मंत्र काम गायत्री, पंच तत्व हरिनाम महा, खूब श्रद्धा से करो, भगवत स्वरूप जान करके करो, अन्यथा भक्ति नहीं होगी। भाई कुछ सोच विचार करके उन लोगों ने दिया है, इसलिए उनको भगवत स्वरूप मान करके खूब प्रीति के साथ में सब झंझट को दूर करके भी चित्त को स्थिर करके करो। हाँ, यदि गुरु सेवा उसी समय में जरूरत है तो गुरु सेवा कर लो, पीछे से नहीं करना, किंतु गुरु सेवा करते हुए और ये सब जो उपदेश दिया उस देश को हम मानेंगे। इसलिए गुरु के प्रति इसी के द्वारा ही हमको वो मिलेगा। इसलिए मंत्र को साधारण मंत्र समझो, इसमें बृहद भागवतामृत में दिखलाया गोप कुमार अपने जीवन की बातें बतला रहा है, किसी बड़े अच्छे संस्कार से गोपकुल में मेरा जन्म हुआ और मैं गौवा चराता था। एक दिन मैंने देखा जो कहीं से रोने की आवाज आ रही है, मैं उधर गया, देखा जो एक आदमी है वो रो रहा है कि गा रहा है, मुझको कुछ समझ में नहीं आया, आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही है। मैंने देखा जो एक साधु, मैं वहां आने जाने लगा, उनके प्रति आकृष्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद में घर से दूध ले आता, उनको पिलाता, उनकी कुछ न कुछ सेवा करता, गोचारण भी आता और उनके प्रति जाकर के दो चार मिनट बैठ जाता, कभी दूध कभी मक्खन कभी कुछ उनको खिलाता पिलाता। एक दिन हमारे भावों को देख करके उन्होंने कहा जाओ जमुना में स्नान कराओ। जमुना में स्नान करके आए और उनको गोपाल मंत्र कह रहे थे, आधा गोपाल मंत्र कहा, पूरा नहीं हो पाया, इतने में आंखों के आंसुओं से लद गए और दिल में आहार उतार करके बेमूर्छित होकर के गिर गए। ये नहीं बतला सके, मंत्र तो किसी प्रकार से हो गया किंतु कैसा करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन नियम है क्या, ये कुछ नहीं बतला सके और रोते हुए गिर गए। अब ये पानी ढूंढने के लिए गए, जिनको उठाए इतने में देखा जैसे गुरु जी हैं नहीं। अब उन्होंने उनकी श्रद्धा तो हुई, कैसे करना चाहिए, वो ऐसे ही जैसे मन है तैसे वो करने लगे, किंतु इसका फल क्या हुआ, संसार की जितनी बात सुनाई थी वो सब खत्म हो गई और धीरे 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 पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्मलोक, इसके बाद में शिवलोक, उसको भी पार करके ब्रह्मलोक इत्यादि को वैकुंठ को पार करके अयोध्या मथुरा द्वारका मथुरा पार करके वृंदावन में पहुंच करके कृष्ण से उनका मिलन हो गया उस गोपाल मंत्र के द्वारा। यह मंत्र संबंध पुष्ट करता है, अनर्थ को दूर करता है। मंत्र माने मनना त्राय से जस्मा, मंत्र जितने मन के धर्म है अनर्थ इसी से होते हैं, यह सबको दूर करने वाला होता है। इसलिए मंत्र को खूब ठीक से करना। पहले के लोग देखते एक मंत्र मिलता था गोपाल का और उसी को करते रहते थे, धीरे 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 उनकी सर्वार्थ सिद्धि होती। इसलिए मंत्र के प्रति उपेक्षा मत करो कभी। खाना प्रधान प्रधान नहीं है और कोई चीज प्रधान है, प्रधान है ये सब गुरु के उपदेश से जो मंत्र मिले हैं उनको करो। ये महाप्रभु जी कहते हैं अपने गुरु जी के लिए किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार फौज देखते जब इसे मंत्र करिला पागल, पागल कर दिया मंत्र। देखा जी एक श्याम सुंदर सलोना लड़का रहा, बल्कि हाथ में बजा रहा है मधुर, बहुत ही लुभावना त्रिभंग रूप से खड़ा है। महाप्रभु जी दौड़े उनको पकड़ने के लिए और वो पीछे हटता गया, अंत में महाप्रभु दौड़ करके पकड़ने गए तो वो अंतर्ध्यान, अब एकदम रोने लगे, पागल हो गए उसके लिए। तो ये मंत्र ही